नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम स्कंद जी अध्याय 9 53 54 और 55 का चर्चा करेंगे। 53 और 54 में तात्पर्य नहीं है तो मैं पढ़ूंगा और 55 में तात्पर्य दिया गया है, हम तात्पर्य पढ़ के उस श्लोक पढ़ के चर्चा करेंगे। दद्यन्न धर्वण सृष्टि वर्माभिद्यं मदात्मकम् विश्वरूपाय यत् प्रादात्वष्टाय त्वमधास्तिता। दध्यंच का नाम नारायण कवच नामक अभेद्य कवच त्वष्टा को मिला, जिसने इसे अपने पुत्र विश्वरूप को दिया और जिससे तुमने इसे प्राप्त किया है। इस नारायण कवच के कारण दधीची का शरीर अब अत्यंत पुष्ट है, अतः तुम जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो। अगला श्लोक है 54। युष्म्याभ्यं याचितोष्विभ्यां धर्मग्नोग्नानि दास्वति ततश्रेरायुध श्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः येन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेजा उपब्रुंहितः। तो भगवान आगे बता रहे हैं, जब तुम्हारी ओर से अश्विनी कुमार दधीची का शरीर मांगेगा तो वे स्नेहपूर्व स्नेहवश अवश्य दे देंगे, इसमें संदेह मत करो, क्योंकि दधीची धर्म के ज्ञानी है। जब दधीची तुम्हें अपना शरीर दे देंगे तो विश्वकर्मा उनकी हड्डियों अस्थियों से एक व्रज तैयार कर देगा। यह वज्र मेरी शक्ति से युक्त होने के कारण निश्चित रूप से वृत्रासुर का वध करेगा। तो आज का ये श्लोक, तस्मिन् विनिहते यूयं तेजोस्रायुध संपदः भूय प्राप्यध भद्रं वो नहिं संति च मत्परान्। मैं एक एक करके पढ़ूंगा, मेरे पीछे आप दोहराइए। तस्मिन् विनिहते यूयं तस्मिन् विनिहते यूयं तेजोस्रायुध संपदः तेजोस्रायुध संपदः भूया प्राप्यथ भद्रं वो भूया प्राप्यथ भद्रं वो नहिं सन्ति च मत्परान् नहिं सन्ति च मत्परान् भावार्थ और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की तस्मिन् जब वह रुद्रासुर विनिहते मारा जाता है यूयम तुम सभी तेज तेज अस्त्र तीर आयुध अन्य हथियार संपदा तथा ऐश्वर्य भूया फिर प्राप्त करोगे भद्रम समस्त कल्याण वह तुमको ना नहीं हिंसन्ति पीड़ा पहुंचाएगा चा तथा मत परान मेरे भक्त। जब रुद्रासुर मेरे आत्मबल ब्रह्म तेज से मर जाएगा तो तुम्हें पुनः अपना तेज आयुध तथा समस्त संपत्ति प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार तुम सबका कल्याण होगा। यद्यपि वृत्रासुर तीनों लोकों को विनिष्ट कर सकता है किंतु तुम मत डरो कि वह तुम्हें हानि पहुंचाएगा। वह भी भक्त है और तुमसे कभी भी विद्वेष नहीं करेगा। तात्पर्य भगवान का भक्त किसी से द्वेष नहीं रखता। अन्य भक्तों की तो दूसरी ही बात है। जैसा कि बाद में पता चला वृत्रासुर भी भक्त था, अतः उससे यह आशा नहीं की जाती थी कि वह देवताओं उनसे द्वेष रखेगा। उल्टे वह स्वतः देवताओं का हित करना चाहेगा। भक्त सत्कार्य के लिए अपना प्राणों की बाजी लगा देते हैं। चाणक्य पंडित ने कहा, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। अंततः मनुष्य की सारी संपत्ति यहां तक कि शरीर भी नष्ट हो जाएगा। अतः यदि किसी सत्कार्य में इनका प्रयोग हो तो भक्त अपना शरीर भी देने से नहीं कतराता, क्योंकि भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करना चाहते थे। अतः वृत्रासुर जो तीनों लोकों को निगल सकता था देवताओं द्वारा मारे जाने के लिए उद्यत हो जाएगा। भक्त के लिए जीना तथा मरने में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जीने पर वह भगवान की भक्ति करता है और देह त्यागने के बाद वैकुंठ में भी वही सेवा करता है। उसकी भक्ति निर्बाध चलती जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत साक्षात राक्षस वृत्रासुर का आविर्भाव नामक नवे अध्याय के भक्ति वेदांत स्वामी तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऊकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनकारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो ये भगवान बता रहे हैं देवताओं को कि आप लोग जाके दधीची के शरीर मांग लेना और दधीची दे देंगे अपना शरीर। मतलब कोई आके किसी को आप जान दे दो, आपका शरीर हमें दे दो, हम आपको मार डालेंगे और हम कुछ बनाएंगे जिससे हमें खुशी और आनंद प्राप्त होगा, आपको कैसे लगेगा? आपको लगेगा मैं मरने के बाद तुम खुशी से रहोगे दुखी से रहोगे, क्या करेगा हमें, मेरा क्या लेना देना है? कोई अपना शरीर को रक्षा करना तो उनका प्रथम कर्तव्य है, धर्म है, कोई देगा? एक्चुअली इस जगत में कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई अपना आत्मरक्षा करे, मेरा मुझे मारने के लिए तुम लोग आए हो, निकलो इधर से, कोई भी ऐसे बोल सकते। मगर भक्त लोग अगर किसी का अच्छा भलाई हो रहा है मेरा शरीर से तो वो देने के लिए भी तैयार होते हैं। तो इसके पहले दधीची के बारे में हम जानना चाहिए दधीची का महत्व को। दधीची के महत्व को जानने के पहले क्यों ये शरीर मांग रहे हैं ये थोड़ा सा वृत्तांत हम पूरा एक बार हम अवलोकन करना चाहिए ताकि हमें स्पष्ट समझ में आएगा दधीची का महत्व। इंद्र अपना स्वर्गलोक में बहुत बढ़िया भोग विलास में थे, इंद्र तृप्ति में, और इतना मस्त थे कि अपना गुरु बृहस्पति आने के बाद भी उन्होंने देखा, बृहस्पति को देखा, अपना गुरु को देखा है, वो अपना सभा में आ गए हैं फिर भी वो नहीं उठा, ना आदर सत्कार किया है और बृहस्पति चले जाते हैं। ये इसका परिणाम ऐसा होता है कि बृहस्पति अपने शिष्यों को त्याग दिया और त्यागने से एक 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 करके ऐश्वर्य जो भी इंद्र के पास था वो एक एक खत्म होने लगा और इंद्र का सिंहासन चले गया। इंद्र इतना दुखी हो गया, मैं बहुत बड़ा अपराध किया हूं, मैं अब क्या करना चाहिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो वो चले जाते हैं, किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी ऐसे हो गया। ब्रह्मा जी उनको डांटते हैं इंद्र को, तुम क्या कर दिया गुरु को, तुम इतना ये बेइज्जती करते हो, वो आ गए हैं, तुम उठ के आह्वान भी नहीं कर सकते, उनको सादर बिठा के उनका चरण स्पर्श करके प्रणाम भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, उठने का भी प्रयास नहीं किया, तुम बैठ गए हो, तो तुम तो इसका भोगना ही पड़ेगा। मगर फिर भी क्योंकि तुम भगवान का निर्देश में काम करते हो, तुम्हारे लिए एक काम हो सकता है। अब तो आपका पुजारी कोई नहीं है, तो आप एक विश्वकर्मा बोल के हैं जो तीन मुख वाला है, इनको आप अपना पुरोहित करके नियमित करो। और उनके पास बहुत बढ़िया नारायण कवच है, उससे आपको इतना शक्ति फिर प्रदान हो जाएगा कि आप असुरों को युद्ध में जीत सकते हैं और फिर आपका राज्य स्वर्गलोक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप जाके विश्वरूप को मनाइए और विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाइए। विश्वरूप के पास जाते हैं और विश्वरूप को मनाते हैं। विश्वरूप ऐसा वैसा आदमी नहीं है। नारायण कवच एक्चुअली ददीची को मिलता है। ददीची से त्वष्टा जो विश्वरूप के पिता, विश्वरूप के पिता को वो देते हैं। विश्वरूप के पिता त्वष्टा विश्वरूप को नारायण कवच को प्रदान करते हैं, तो पूरा विधि विधान व्रत करने का विश्वरूप को पता है। विश्वरूप ये बहुत बढ़िया व्रत को संपन्न करते हैं और इंद्र पूरा का पूरा शक्तिमान बन जाता है और असुरों के ऊपर विजेता बन जाता है। असुरों को हरा के अपना राज्य को फिर से प्राप्त कर देता है और अपना सिंहासन सब कुछ प्राप्त कर लिया। मगर जब विश्वरूप के बारे में जब ब्रह्मा जी बता रहे थे, एक चेतावनी देते हैं कि ये विश्वरूप जो है थोड़ा सा पक्षपात करेगा अपना मातृकुल का। उनका मातृकुल था एक्चुअली दैत्य असुर, तो असुरों को थोड़ा सा पक्षपात दिखाई देगा, तुम ये सहनना पड़ेगा, तो ये पहले ही बताए थे। इंद्र समझते हैं क्या पक्षपात करता है, कुछ ऐश्वर्य दे देगा हम जीत के आने के बाद, कुछ ये धन वगैरह जो भी ऐश्वर्य है हमारे पास दे देगा और इससे क्या है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले हमारा सिंहासन हमारा गद्दी जीतना चाहिए, स्वर्ग के ऊपर हमारा राज्य होना चाहिए। तो ये हो गया। फिर उनको पता लगता है कि ये यज्ञ में विश्वरूप असुरों को भी भाग दे रहा है। असुरों को जैसे भाग दे रहा है, इसका मतलब है असुर ये यज्ञ का भाग लेने से उनको शक्ति मिलेगा। उनको शक्ति मिलने से मुझे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, मुझे फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। इंद्र ने यह सोचा, तुरंत जैसे ही उनको पता लगा कि विश्वरूप यज्ञ का भाग दे रहा है, तो तुरंत जाके उसका तीनों सिर को काट डालते हैं। ये विश्वरूप अपना तीन सिरों से एक सिर से ये पान, क्या पान करते हैं, सोम पान करते हैं, दूसरा सिर से मदिरा, तीसरा सिर से भोजन करते हैं। तो ये तीन एक्चुअली उनका सिर से काम करता था, फिर भी वो ब्राह्मण का पूरा विधि विधान अच्छा करता था। इंद्र को इतना क्रोध आ गया कि उसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, उसको मार डाला, तीनों के तीन सिरों को काट दिया। उनके पिता त्वष्टा जैसे पता लगा कि मेरा पुत्र का वध हो गया है इंद्र से, मैं ऐसे ही यज्ञ करूंगा, इंद्र को मारने वाला एक बहुत बड़ा असुर को मैं प्रकट करूंगा, ऐसे ही निश्चय करके वृत्रासुर को प्रकट करता है। जो भी है, वृत्रासुर प्रकट हो गया है और वृत्रासुर के ऊपर ये पूरा देवता और उनको अपने आयुध से हमला करते हैं, वो पूरा का पूरा आयुध निगल देते हैं, उनको कोई केयर नहीं है, पूरा आयुध सब कुछ खो गए। और देवता इतना घबरा गए, ये तो हमें खत्म कर देगा, अब क्या करना है। अब तो एक ही रास्ता बचा है, सब लोग मिलके भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान के पास जाके वो इतना स्तुति करते हैं जो हमने देखा है 31 से 45 तक, वो स्तुतियों में बहुत भगवान के बारे में प्रशंसा करते हैं और भगवान का इतना ध्यान करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होके फिर बताते हैं, ये जो तीन श्लोक है भगवान का आखिरी तीन श्लोक है, जो भगवान बताते हैं कि देखो तुम ये अश्विनी कुमार जो है, तो अश्विनी कुमार दिख रहा है, अश्विनी कुमार इनसे ये जाके मांगेगा दधीचि का शरीर और दधीचि दे देगा, दधीचि अपना शरीर आपको दे देगा और उससे विश्वकर्मा जो है बहुत बढ़िया उनका अस्थि उनसे ये एक वज्र तैयार करेगा, आयुध तैयार करेगा, उससे तुम ये वृत्रासुर को मार सकते हो, तुम इसमें कोई चिंता की बात नहीं। अब भगवान क्यों इंद्र को छोड़ के ये अश्विनी पुत्र उनको क्यों कह रहे हैं, इसका थोड़ा वृत्तांत हम देखना चाहिए। दधीचि इतना ज्ञानी और धर्मनिष्ठा थे, जब अश्विनी कुमार उनके पास आके उनको ब्रह्म ज्ञान का विधि विधान पूरा समझाने के लिए और वो पूरा ब्रह्म विद्या को उनको प्राप्त करने के लिए उनसे मांगते हैं, जब ये मांगा तो वो कहते हैं मैं तो अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ, मैं बिजी हूँ पौरोहित्य कार्यक्रम में, थोड़े देर के बाद आ जाइए। उन्होंने मना नहीं किया, अगर वो मना करते हैं वो बात अलग होता है, उन्होंने कहा थोड़े देर के बाद आ जाइए, हाँ थोड़े समय के बाद आइए। ये देखे अब इनको समझ में आ गया, इंद्र को समझ में आ गया कि ये तो ब्रह्म विद्या ये अश्विनी कुमारों को प्राप्त होगा, पता नहीं क्या इसका परिणाम होगा, ये आके दधीचि को चेतावनी देते हैं, दधीचि मुनि आप अगर ये ब्रह्म विद्या को प्रदान करते हो अश्विनी कुमारों को, ये ठीक नहीं होगा, आप विद्या प्रदान नहीं कीजिए, अगर आप विद्या प्रदान करना चाहते हो तो मैं आके आपका सिर को काट दूंगा। तो ये चुप हो गए, फिर ये तो आ गए अश्विनी कुमार आ गए, आके पूछते हैं, अब समझ लिए कि ये तो इंद्र आके गया है और इनका मनोभाव को समझ लिए, तो उनका प्रणाली का वो सोचते हैं कैसे करना है। वो बताते हैं दधीचि से, देखिए दधीचि हम दधीचि मुनि दधीचि ऋषि आप कुछ चिंता करने की बात नहीं, हम आपका सिर पहले काट देंगे। मेरा सिर काट देंगे, ये क्या हो रहा है, आपके सिर काट के हम उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको रक्षा करेंगे, उसको रखेंगे और घोड़े का सिर को हम आपको लगा देंगे और घोड़े के सिर से आप हमें पूरा ज्ञान दे दीजिए। जैसे घोड़े के सिर से ज्ञान प्राप्त होता है, अगर वो इंद्र आके आपका सिर को काट देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तुरंत आपका जो ओरिजिनल सिर है, जो आपका सिर है, वो सिर हम फिर लगा देंगे, इसमें कोई हमारे लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो दधीचि ऋषि समझ लेते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, तो उनका सिर काट दिए और उनका सिर में अब घोड़े का सिर लगा दिए, घोड़े का सिर से पूरा का पूरा ब्रह्म विद्या का प्राप्त कर लेते हैं और इनको ब्रह्म विद्या का प्राप्त हो गया ये सोच के, ये समझ के इनके पास जैसे वो इन्फॉर्मेशन मिल गया उनका गुप्तचरों से कि ये ब्रह्म विद्या तो पूरा इनको तो प्राप्त हो गया, इंद्र तुम क्या कर रहे हो, अरे उनको तो पूरा प्राप्त हो गया आप तो करके आए हो, अच्छा मैं अभी सबर सिखाता हूँ, आके देखते हैं ये तो घोड़े का सिर है, ठीक है कोई बात नहीं, घोड़े का सिर धारण करके बता रहा है, घोड़े का सिर को काट दिया चले गया अपना स्वर्ग लोग चले गया। फिर अश्विनी कुमार आते हैं, जैसे ही उन्होंने बताया था सिर को फिर पुनस्थापना करते हैं और दधीचि मुनि बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं जैसे पहले थे। अब देवता लोग उधर जाके पूछेंगे, अब इतना काम करने के बाद इंद्र तो नहीं पूछ सकता, तो इसलिए भगवान कहते हैं अश्विनी कुमार पूछेंगे, अश्विनी कुमारों को उनके ऊपर बहुत कृपा है, तो अश्विनी कुमार जाके उनसे पूछते हैं कि ये वृत्रासुर इतना भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ है, ये देवताओं को पूरा खत्म कर देगा, हमारा आयुध भी चले गया, सब कुछ वो निगल रहा है, वो इतना प्रचंड हो गया है, हमें बहुत अभी भय हो रहा है क्या होगा। तो इसका साधन भगवान विष्णु ने बताया कि आपके शरीर के हड्डियों से एक वज्रायुध विश्वकर्मा बना देगा, इससे हम फिर अपना स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे और ये वृत्रासुर को मार सकते हैं, तो कृपया आपका शरीर हमें देना है। तो पहले मना कर देते हैं, बाद में उनको टेस्ट करते हैं, मना करने से इनका रिएक्शन क्या होगा, फिर भी बताते हैं कि ये शरीर तो किसी काम का नहीं, तो मैं शरीर देने के लिए तैयार हूं। तो उनका शरीर जैसे वो त्याग दिए हैं, उनका हड्डियों से ब्रह्मा ये विश्वकर्मा आयुध बनाते हैं, वज्रायुध, ये वज्रायुध से वो फिर ये वृत्रासुर को मारते हैं, और वृत्रासुर को मारने के बाद राज्य को फिर अपना स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही लक्षण होता है भक्तों का, भक्त किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखते हैं। अगर कोई द्वेष भाव रख रहे हैं तो वह भक्त नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि ये भक्त है, अब कोई चिंता करने का बात नहीं है, दादी जी दे देगा, अपना शरीर देगा। और वैसा ही ये वृत्रासुर भी भक्त हैं, उनका इतना भयंकर रूप को देख के आप कोई संशय मत करो, उनके ऊपर ये वज्रायुध से ये इंद्र हमला करो और वो आपको ही सहायता करेगा। तो भक्त ऐसे होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होते हैं। जैसे प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिमान था और विष्णु भक्त होने के कारण प्रहलाद को इतना कष्ट दिया, उनको हाथी से कुचलवाया, ऊपर से गिरा दिया, इतना ऊपर पहाड़ के ऊपर से गिरा दिया और अग्नि में फेंका होलिका के साथ साथ, फिर सांपों से डसवाया, इतना कष्ट दिया, फिर भी आखिर में जब नरसिंह भगवान सब कुछ उनका शरीर को चीर के खत्म करने के बाद जब उनसे पूछते हैं प्रहलाद तुम कुछ मांगो, तो प्रहलाद अपना पिताजी का कोई द्वेष भाव नहीं रखता है और कहते हैं कि मेरा पिता का उद्धार करो, इतना ही मेरा निवेदन है। जब नरसिंह भगवान इतना क्रोधित हो चुके हैं, प्रहलाद जी का महत्व को देखिए, कोई उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं है, सब देवता ब्रह्मा लक्ष्मी माता भी उधर उपस्थित थे, देख रहे हैं, उनका क्रोध को देख के इतना घबरा गए कि वो आगे नहीं बढ़ सके, उनको शांत करने का उनका प्रक्रिया पता नहीं लगा। फिर ब्रह्मा कहते हैं हे प्रहलाद आप आगे बढ़ो, आप उनको शांत करो, क्योंकि आपने नरसिंह भगवान को प्रकट किया है, आप जाइए। बिना कोई शंका, बिना कोई उनको कोई डर है ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल इतना शुद्ध भक्त था, भगवान के पास चले जाते हैं, नरसिंह भगवान के पास, और उनको शांत करते हैं। भगवान उनके सिर पर हाथ लगाते हैं और प्रहलाद को पूरा का पूरा वेदों का ज्ञान उनके दिमाग में उनके मन में आ जाता है। और जब भगवान पूछते हैं हे प्रहलाद कुछ वरण मांग लो, तुम इतना कष्ट भोगे हो और मैं तुम्हें देने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, मांग लो। प्रहलाद कहते हैं भौतिक चीजों को मांग से क्या फायदा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा कोई भौतिक इच्छा ना हो। फिर भी भगवान पूछते हैं नहीं नहीं तुम कुछ वर मांगो। जब वो पूछते हैं हे भगवान आपके शत्रुता मेरा पिताजी ने किया है, उनके अज्ञान के कारण वो आपका शत्रु बन गया है, उनको क्षमा कीजिए और उनको उद्धार कीजिए। नरसिंह भगवान कहते हैं हे प्रहलाद तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में पैदा हुआ है उसमें 7x3 21 पीढ़ियां उद्धार हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, इतना कष्ट देने के बाद भी वो एक बात भी उनके पिताजी के अगेनेस्ट में विरुद्ध में कुछ नहीं कहा और उनका उद्धार का ही भगवान से मांगते हैं। वैसे ही महाराज अम्बरीश को देखिए, महाराज अम्बरीश के पास आ गया था दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि आए हैं, अम्बरीश महाराज कहते हैं हमारा एकादशी व्रत तो समाप्त होने वाला है, द्वादशी का पारायण का समय भी आ गया है, आइए आइए ऋषि ऋषिवर आप आ जाइए, चलो आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं मैं अभी नहा के आता हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, नहा के आता हूँ। नहाने के लिए गया गया गया, टाइम तो होने समय तो बीत ही गया, बीत ही जाने वाले थे। थोड़ा सा जल ग्रहण करने के लिए उनका पुरोहित बोलते हैं, फिर वो जल ग्रहण करते हैं ताकि अतिथि सम्मान वैसा ही रखे। जब भी जैसा जल ग्रहण कर लिया, आ गया है दुर्वासा मुनि और इतना क्रोधित होते हैं, तुम क्या सम्मान करते हो, हाँ मैं और मेरा शिष्य के सामने तुम तो इतना मुझे अपमानित कर दिया, तुम राजा रखने का योग्य नहीं हो, ये वो बात करते हैं। अपना जटा से एक बहुत भयंकर राक्षस को उत्पन्न करते हैं और इसको मारने के लिए उस राक्षस को बोलते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं अम्बरीश महाराज, हे भगवान अगर आप रक्षा करना चाहते हैं तो आपका मर्जी, आपका इच्छा से मैं अगर शरीर त्यागना है तो मैं शरीर त्यागने के लिए भी रेडी हूँ, आप जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए। जैसे उन्होंने प्रार्थना की, जैसे संकट में आ गया, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र तुरंत प्रकट होता है और वो महाराक्षस को मार डालता है और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ता है। दुर्वासा मुनि हर एक जगह में जाते हैं घूम के आते हैं, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, फिर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान कहते हैं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, हम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन में हूँ, और जो महान भक्त अम्बरीश है उनसे ही आप पूछ लो। फिर आके उनके चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम करके दुर्वासा मुनि बोलते हैं मुझे रक्षा करो, मेरे से गलती हो गई। देखिए अम्बरीश महाराज, देखो वो राजा भी है, वो फिर भी उनके अंदर कुछ द्वेष भाव नहीं था। मुझे मानने के लिए तुम तो राक्षस को प्रकट किया था, अब मेरा पैर पकड़ रहे हो, तुमको दो मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। नहीं, वो कुछ नहीं कहा। उन्होंने जैसे पैर के ऊपर गिर गया तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इनको रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र को वापस लीजिए। तो वो कुछ द्वेष भाव नहीं रखा, यही है भक्तों का लक्षण। तो ये हमारे अंदर जो भी द्वेष भाव है, अगर हम द्वेष भाव से बाहर नहीं आ सकते हैं तो हम कभी भक्त नहीं बन सकते हैं। इस द्वेष भाव को दूर करने के लिए इसका उपाय भागवतम स्कंद 9 में बताया गया है। श्री रामचंद्र जी के चरित्र को, राम जी के बारे में पूरा सुखदेव गोस्वामी नवा स्कंद अध्याय 11 में बताते हैं और आखिर में बताते हैं, पुरुषो रामचरितम श्रवणे रूप धारयन अनृशंस्य परो राजन कर्म बंधेर विमुच्यते। ये जो भी कर्म बंधन है इससे बाहर आ सकते हैं। ये क्रोध या हमारे अंदर जो भी ईर्ष्या भाव है इससे बाहर आने का उपाय यही है, श्री रामचंद्र जी के गुण का गान करें, उनके विषय में सुने, भगवान का लीलाओं को ऐसे सुनने से हमारे अंदर जो भी ईर्ष्या है वो मूलतः खत्म हो जाएगा। ये श्लोक नंबर 23, 11 अध्याय स्कंद 9 में इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया बताते हैं कि इस संसार में हर एक व्यक्ति किसी न किसी का द्वेष करता है, मगर भक्त लोग जो है किसी को द्वेष नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर हर मिनट ये भाव रहता है कि भगवान हमें रक्षा कर रहे हैं। द्वेष भाव इसलिए आता है कि वो उनका स्वार्थ बुद्धि होता है और स्वार्थ से मैं और मेरा, मेरा कोई छीन लेगा और मेरा कोई समान नहीं होना चाहिए, ये भाव जब अंदर आता है द्वेष भाव आता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं किंतु भक्त इवन मुक्ति का भी नहीं चाहते हैं और भक्त को शरीर से भी कुछ लेना देना नहीं है। अतएव वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहते हैं। भक्त किसी भी ईर्ष्या, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहां तक कि अपना शत्रु से भी नहीं, क्योंकि भक्त यह जानता है कि भगवान उसका परम रक्षक है। अतएव वह यह सोचता है कि तथा कथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में अपेक्षा नहीं रखता है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम, जो जिस अनुपात से मेरा शरण लेता है उसी अनुपात से मैं उनका रक्षा करता हूं। अतएव भक्त को पूर्णतया ईर्ष्या विहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से उनसे ईर्ष्या करना महान अपराध है। भक्तों से ईर्ष्या करना किसी को भी ठीक नहीं है और महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। तो भगवत जाने का पात्र तभी बनेंगे जब हम हमारे मन से ईर्ष्या का भाव निकाल दें। अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी ईर्ष्या का भाव है तो हम भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते। एक्चुअली हम सब लोग भगवान के धाम में भगवान के सेवा कर रहे थे, मगर किसी न किसी कारण भगवान को भूल के हम अपना भोग विलास, भगवान को भूल के भोगने का प्रयास जब किया है, भगवान हमें इस पृथ्वी पर भेजे हैं और हम इस पृथ्वी पर आते ही जैसे कंडीशन हो जाता है, जैसे एयर कंडीशन रूम में आप अंदर गए, आप पूछे ना पूछे आपका शरीर ठंडा हो जाता है। आपका सामान जो भी लेके आए हैं, आप सूटकेस लेके आए हैं या कुछ आप में हाथ में कुछ बैग है तो बैग भी ठंडा हो जाता है। आप पूछे ना पूछे, कंडीशनिंग अफेक्ट। वैसा ही जैसे हम इस धरती पर आ गए हैं, वैसा ही जैसे धरती पर आ गए ये तीनों गुण हमें पकड़ के हमें नचाता है। तो ये तीनों गुण के प्रभाव से हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ पैदा होता है, मगर सतोगुण में रह के ये तीनों गुणों के ऊपर उठना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। जब ये तीनों गुणों के ऊपर उठते हैं तभी हम बंधनों से बाहर आ सकते हैं। सतोगुण में रह के जो भी पुण्य कार्य करते हैं तो पुण्य कार्य भी बंधन का कारण होता है, भोगना पड़ेगा उसका फल स्वरूप। जो भी सुख भोगना है फिर सुख भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा या स्वर्गलोक में वास करना पड़ेगा, स्वर्गलोक में वास करने के बाद फिर आना पड़ेगा। सो ये तीनों गुणों से भगवान कहते हैं हे अर्जुन ये तीन गुण से ऊपर उठो और मेरा भक्ति में काम करो। जैसे भगवान के भक्ति में हम भगवान की सेवा में सब कुछ काम करते हैं, अकर्म कहलाता है। जो भी काम हम भगवान कृष्ण के लिए ही करेंगे, जब भगवान कृष्ण के लिए ही हर काम होता है तो कोई बंधन में नहीं आता है। ये शुद्ध सत्व गुण होता है तो इस गुण में हम रहने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इसमें आप देख सकते हैं आनंद या खुशी पाने का मार्ग, इतने लोग देखते हैं फंस गए हैं फिर भी वो खुशी पाने का अपना इंद्रिय तृप्ति में लग जाने का प्रयास करते हैं। इंद्रिय तृप्ति से हम बद जाएंगे और फंस जाएंगे इस जन्म मृत्यु चक्कर में, मगर इससे बहुत बढ़िया खुशी और आनंद का रास्ता है भगवान का सेवा करके, भगवान के हर काम में भगवान को केंद्र बना के, सेंटर बना के हर काम जो भी काम करते हैं वो भगवान कृष्ण के लिए जब हम करना शुरू करते हैं, हम ये भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं और हमें खुशी और आनंद स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम शरीर के लिए प्रयास करते हैं ये कोई काम का नहीं, हमें कभी ना खुशी मिलेगा ना आनंद मिलेगा। क्योंकि जैसे पिंजरे में ये तोता है, अगर तोता को कुछ खाना नहीं देते हैं, पिंजरे को बार बार साफ करते हैं, बार बार पेंट करते हैं, बार बार उसको देखभाल करते हैं पिंजरे को, और पिंजरे के अंदर जो तोता है तोता को कुछ खाना नहीं दे रहे हैं, तोता तो चिल्लाते रहेगा। वैसा ही हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा का जो भोजन है भगवान का नाम, अगर वो नहीं मिलता है वो आत्मा चिल्लाते रहेगा, कभी हमें खुशी या शांति प्राप्त नहीं होगा और हम जन्म मृत्यु चक्कर में फंसे रहेंगे। एक छोटा गधा बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, जवानी लड़की जवानी गधे के पीछे पड़ता है और अपना परिवार को बनाया, बहुत बढ़िया परिवार, और गधा बूढ़ा हो गया और गधा मर गया। अगर भगवान का नाम नहीं लेते हैं, अगर भगवान का चिंता नहीं करते हैं हमारे जिह्वा से, हमारा मन से, तो हमारा जो काम है और गधा का काम है या कोई पशु का काम है, इसमें अंतर बिल्कुल नहीं है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत पैसे कमा सकता है, बहुत बड़े बड़े दुकान हो सकता है, बहुत बड़े बड़े गाड़ी रह सकता है, अगर उनके अंदर भगवान के प्रति कोई चिंता नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं करता है, भगवान ने दिया है सब कुछ, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ, एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम मी, कृष्ण भगवान बताते हैं सब कुछ मेरे से उद्भूत है, तुम्हारे अंदर शक्ति भी मैंने दे चुका हूं, सब कुछ भगवान ही कारण है। तो ये अगर मन में नहीं आता, जितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, जितना भी बड़ा धनी हो, जितना भी बड़ा बिजनेस करने वाला हो, जितना भी बड़े बड़े डिग्री पीएचडी भी आया, सब कुछ आया, मगर उसको भगवान का ज्ञान नहीं है, तो उसका जीवन और गधे का जीवन में अंतर नहीं है। जैसे वो छोटा बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होके बड़ा बड़ा डिग्री, बड़े बड़े दुकान रखा है, पैसे कमाया, अपना परिवार बनाया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर मर गया, क्या अंतर पड़ा गधा का जीवन या कोई पशु का जीवन और मनुष्य के जीवन में? अंतर नहीं पड़ा। जब तक हम हमारे अंदर जो भी ये कूड़ा हमारे दिमाग के अंदर आ गया है, जन्म जन्मों से, एक एक जन्म से हम कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, अगर ये कूड़ा को हम अगर नहीं निकालते हैं तो हमारा जिंदगी भगवान के प्राप्ति का लायक नहीं बनता। हमारे अंदर कलमश अगर थोड़ा भी रहा तो हम भगवान के सन्निधान में पहुंचने का योग्य नहीं बनते हैं। इसलिए हम जल्द से जल्द हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाना चाहिए और ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र को जब हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान के सेवा में पूरा लग जाते हैं भगवान का स्मरण करते हुए, फिर एक एक करके हमारे अंदर जो भी कूड़ा है, जो भी हमारे अंदर कलमश है, सब कुछ निकल जाएगा और हमारा मन इतना शुद्ध हो जाएगा कि हम मन में भगवान को दर्शन कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर आने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को बिना कोई अपराध हम जप करना चाहिए और आचार्यों के, गुरु का आदेशों का पालन करते हुए हमारा जीवन को हम ठीक से मोड़ना चाहिए। तो आज हम यही चर्चा कर रहे थे, जो भगवान के भक्त किसी से भी द्वेष नहीं रखता, उनका ईर्ष्या या द्वेष किसी से नहीं रखेगा, वही भक्त कहलाएगा। इसलिए हमारे अंदर जो भी अगर ईर्ष्या का प्रवृत्ति है, हम तुरंत हम अपने आप को पहचानना चाहिए मेरे अंदर ईर्ष्या का प्रवृत्ति आ चुका है, ना मैं भक्त हूं, ना मैं भक्त बन सकता हूं, ना मैं भगवान का दर्शन का भगवत प्राप्ति का मैं योग्यता मेरे पास नहीं है, तुरंत उसको छोड़ के भगवान के आश्रय लेके हम भगवान के भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण को पाने के लिए यही है कि हम भगवान को केंद्र रखना चाहिए, कृष्ण को हर कार्य में केंद्र रख के हमारा कार्यक्रम हम करना चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं, अगर कोई व्यापारी है अपना व्यापार कर रहे हैं कोई बात नहीं, अगर भगवान के नाम से भगवान को केंद्र रखे, ये जो मेरे अंदर बुद्धि है भगवान ने दिया है, जो अगर मेरा लाभ आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है ये भगवान दे रहे हैं, कृष्ण के लिए ही ये पूरा काम हो रहा है, कृष्ण से ही मुझे शक्ति मिल रहा है। हर मिनट भगवान को याद करते हुए, भगवान को केंद्रित करते हुए हम जब भगवान का सेवा करते हैं, हमें डेफिनेटली भगवान का प्राप्ति होगा, और हमारे अंदर जो भी कूड़ा ये कलमश है निकल जाएगा और हम भगवान का प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण से निरंतर संबंध स्थापित करने से शुद्ध भक्त का लक्षण हमारे अंदर प्रकट होता है। शुद्ध भक्त का लक्षण जो भी एक एक है वो एक एक हमारे अंदर प्रकट होता है। जैसे प्रहलाद का लीजिए या अम्बरीश का लीजिए, जो भी लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त बनने से ही प्रकट होगा। इसलिए हम बिना कोई अपराध महामंत्र का जप करना चाहिए और ये अति आवश्यक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका कोई प्रश्न, अमूल्य प्रश्न, कमेंट या सुझाव आप दे सकते हैं। क्योंकि ये हम एक जन्म में नहीं, दो जन्म में नहीं, करोड़ 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 जन्मों से जो भी हमारे अंदर मलिनता है, कलमश है, वो निकलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हम अपने आप को पहचानना चाहिए, मेरे अंदर ये कलमश है, मैं भगवान का भक्ति कैसे कर रहा हूँ, मैं क्या भक्त हूँ, क्या मैं भक्त नहीं हूँ। जब मेरे अंदर कलमश है तो मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भक्त बनने का और सीरियसली गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। कोई बिना कोई अपराध हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना है, और हम भगवान के सेवा में बिना कोई अपराध बिना कोई स्वार्थ चिंतन ये जब करते हैं, ये डेफिनेटली श्योरली हमारे अंदर एक एक करके ये कलमश निकल जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, यही हमारे लक्ष्य है। हमारा चित्त को साफ करने का एक ही विधि है, भगवान का नाम लेना है। तो जैसे ही हम भगवान का नाम निष्ठा रूप से श्रद्धा से बिना कोई अपराध करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर ये जो शुद्ध चिंता हमारे अंदर आएगा, हम शुद्ध बनेंगे। क्योंकि हमारे आचार्यों ने जो भी ये प्रोसेस दिए हैं ये बिल्कुल 100% परफेक्ट है। हम परफेक्ट नहीं है, मगर जो प्रोसेस हम अपना रहे हैं वो परफेक्ट है, तो हम परफेक्ट बनेंगे। यही है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? माता जी, हाँ माता जी पूछ। हाँ जी, जब हर काम भगवान की इच्छा से हो रहा है ऊपर या नीचे, वो कोई एक्चुअली अंतर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम हमारे टोटली हमारे अंदर ये भावना है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सब कारण के कारण भगवान कृष्ण हैं, जब ये पूरा का पूरा हमारे अंदर ये चिंता आता है, तो जो भी है, अगर कुछ लॉस हो गया, कुछ खत्म हो गया, कुछ ये हो गया, कोई अंदर नहीं पड़ता, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो ये जब हमारे अंदर ये भावना आता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, हमें कोई भगवान आपकी इच्छा, हे कृष्णा आपकी इच्छा से हो रहा है, आपका मर्जी, मुझे जिधर भी डालो, मुझे नरक भी भेजो, आपका इच्छा, मैं आपका सेवा करने का, मेरा भाग्य है, मैं आपका सेवा करने का लायक मुझे बना दीजिए। बस हम इतना ही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि मैं आपका सेवक बनने का लायक बना दीजिए, हे राधे हे कृष्णा मुझे इतना शक्ति दो कि मैं आपका सेवा करने का लायक बनूं। तो बस थोड़ा ऊपर नीचे होता है, भगवान की इच्छा मान के आगे चलना है। परीक्षा तो होता है, परीक्षा में कुछ कम मार्क्स आए तो ही वो बच्चा अच्छा पढ़ के फिर तैयार होके आ जाएगा अच्छा मार्क्स लाने के लिए, ये है। तो भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखें, और जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, जब हमारे मन में दृढ़ता पूर्वक ये विश्वास होता है, हमें कोई अंतर समझ में नहीं आता, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके माता जी, हरे कृष्ण, और कोई प्रश्न? ओके, अगर आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो हम समाप्त करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। धन्यवाद, हरे कृष्ण।